फ्लैशबैक। आरवी कुछ देर तक परेशान सी अपना फोन देखती रही। वो खुद जाना चाहती थी शान को लाने, पर रात ज्यादा हो गई थी इसलिए अकेले जाने में हिचकिचा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने रेहान को फोन लगा दिया। रेहान तो सो चुका था, पर फोन की आवाज़ कानों में पड़ने पर उसने उनींदी आंखों से फोन को देखा और जब स्क्रीन पर भाभी शब्द चमकते देखा तो तुरंत हड़बड़ाहट में अपना आंखों को खोलते हुए उसने झट से कॉल रिसीव करते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहा, हेलो भाभी, आप ठीक तो हैं? आपने इतनी रात का ही फ़ोन किया, सब ठीक है ना? शान को तो कुछ नहीं हुआ? उसने एक सांस में ही आरवी से इतने सवाल कर दिया और शायद अभी वो चुप नहीं होता अगर आरवी उसकी बात को काटते हुए न कहती, रेहान यहाँ सब ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए। आप जाकर रेहान की जान में जान आई और उसने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत करते हुए पूछा, भाभी अगर सब ठीक है तो आपने इस वक्त फ़ोन? कहते कहते वो चुप हो गया, पर उसके अधूरे सवाल को समझते हुए आरवी ने हिचकिचाते हुए कहा, आपको इतनी रात के डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर अभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? और माफ़ी वाफ़ी मत मांगिए, मैं देवर हूँ आपका, आपको जब भी ज़रूरत हो आप बेझिझक मुझे याद कर सकती हैं। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। चलिए अब बताइए कि किस बात के लिए आप परेशान हैं? वो अभी तक घर नहीं आए हैं, फ़ोन करती हूँ तो उठाते नहीं और मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो नहीं आए तो मैं वहाँ आ जाऊँगी, पर अब अकेले इतनी रात को मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आरवी ने अब सारी बात उसे साफ साफ शब्दों में बता दी। रेहान ने उसकी बात सुनी तो बेबसी से अपना सर हिलाते हुए मन ही मन बोला, इस बेवकूफ़ आदमी का कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं समझ सकता कि इसके दिमाग में कब क्या चलता रहता है। हद होती है मतलब किसी बात की, बीवी यहाँ आधी रात तक भूखे प्यासे उसका इंतज़ार कर रही है और उसे कोई फिक्री नहीं, उसकी न सही अपनी ही परवाह कर लेता, खाया पिया तो खुद ने भी कुछ नहीं है सुबह से, फिर भी अपना गुस्सा दिखाना है उसे। अब मुझे ही इस बेवकूफ़ की अकलें ठिकाने लगानी होगी। रेहान ने मन ही कुछ प्लान बनाया, फिर आरवी से गंभीरता से बोला, भाभी आजकल इसका ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोबारा वहाँ जाए ही ना, और अगर जाए तो वक्त पर घर लौट आए। आरवी ने उसकी बात सुनी फिर कन्फ्यूज सी बोली, ऐसा कैसे होगा? होगा, ज़रूर होगा, और उसके लिए मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट प्लान है जिससे हमारा काम ज़रूर बन जाएगा। कैसा प्लान? आरवी के पूछने पर रेहान ने उसे कुछ बातें बताई जिसे आरवी ने बड़े ही ध्यान से सुना और उसके चुप होते ही परेशान सी बोली, ये सब मुझसे नहीं होगा और बहुत रिस्क है इसमें, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें उन सबसे कोई फ़र्क ही ना पड़े, वैसे भी उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो उन्हें मेरे किसी और के साथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका प्लान बेकार जाएगा। आरवी की बात को खामोशी से सुनने के बाद रेहान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भाभी मैं बचपन से शान के साथ रहा हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्लान काम ज़रूर करेगा, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए और जैसा कहा है वैसा कीजिए। मुझसे नहीं होगा ये सब, आरवी ने मुंह लटकाते हुए मायूसी भरे लहजे में जवाब दिया, जिसे सुनने के बाद रेहान ने गंभीरता से कहा, भाभी आप बस मुझे इतना बताइए कि आप शान से प्यार करती हैं या नहीं? करती हूँ पर, वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही रेहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं भाभी, आप शान से प्यार करती हैं तो आपको अपने प्यार के लिए करना ही होगा, यही एक तरीका है जिससे न सिर्फ शान बिना कोई ड्रामा किए खुद घर आएगा बल्कि दोबारा उस जगह भी नहीं जाएगा और उन लड़कियों से भी नहीं मिलेगा, बस आपको सब वैसे ही करना होगा जैसे मैंने कहा है। रेहान की बात सुनने और अच्छे से समझने के बाद फिर आरवी ने चिंता भरे स्वर में कहा, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी, पर इतनी रात को एक लड़का कहाँ से लाएंगे जो हमारे लिए ये नाटक करने को तैयार भी हो जाए और जिसके साथ मैं कंफर्टेबल भी रहूं? आरवी का सवाल सुनकर रेहान भी सोच में पड़ गया, फिर अचानक ही उसके दिमाग में अक्षत का ख्याल आया, वही तो था जिसकी वजह से आज वो और रश्मि साथ थे और वो जानता था कि अक्षत रश्मि और आरवी का कॉलेज फ्रेंड है, अच्छा लड़का है, मतलब इस ड्रामे के लिए हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। उसने अच्छे से इस बारे में सोचने के बाद आरवी से सवाल किया, भाभी आपका और रश्मि का वो कॉलेज फ्रेंड है ना अक्षत, क्या आपकी उसे बात होती है? आरवी अक्षत का नाम सुनकर चौंक गई, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं बात तो नहीं होती, पर नंबर है उसका मेरे पास, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो इस वक्त हमारे बहुत काम आ सकता है, वो अच्छा लड़का है और आपका दोस्त है तो आप उसके साथ कंफर्टेबल रहेंगी और वो आपके लिए हमारी मदद के लिए तैयार भी हो जाएगा, पर इतनी रात को उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। आरवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, जिसे समझते हुए रेहान ने आराम से कहा, भाभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे उसका नंबर दे दीजिए और जो मैंने कहा है उसके लिए खुद को मेंटली तैयार कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो मैं कहाँ मिलूँ आपसे? आप घर पर ही रहिए, मैं वहीं आता हूँ। रेहान ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। आरवी ने उसे अक्षत का नंबर सेंड कर दिया। रेहान ने उसे फ़ोन किया तो वो सो रहा था, इसलिए पहली बार में उसने फ़ोन नहीं उठाया, पर सेकंड टाइम में उसने कॉल रिसीव कर लिया। रेहान ने अपना इंट्रो दिया, फिर उसे सारी बात समझाई और सब जानने के बाद अक्षत एक ही बार में आरवी के लिए इस नाटक को करने को तैयार हो गया। रेहान ने उसे उसके घर से पिक किया और साथ ही ऐश्वर्या को भी पिक किया और दोनों को लेकर मल्होत्रा हाउस पहुंच गया, जहां आरवी उसी का इंतजार कर रही थी। ऐश्वर्या ने भी आरवी को ड्रेसअप किया, उसका मेकअप किया। उसके बाद रेहान उसे वापस घर ड्रॉप करते हुए क्लब के लिए निकल गया। आरवी थोड़ा घबरा रही थी, पर रेहान के समझाने पर उसने खुद को शांत किया। अंदर बैठा शान अपनी ही सोच में गुम था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वहां रेहान के भेजे लोग आ गए जो इस नाटक का गवाह बनने वाले थे। उसके बाद सब वैसा ही हुआ जैसा रेहान ने कहा था, और शान आरवी को लेकर न सिर्फ गुस्से में घर आया बल्कि उसने उसका व्रत भी खुलवाया और वादा भी किया कि दोबारा वहां नहीं जाएगा। आरवी ने अब शान को देखा, फिर उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाते हुए बोली, कितना नाराज हो गए थे कल आप, इतना गुस्सा किया, अक्षत को मारा भी, उसे धमकी भी दी, पर यह सब क्यों किया आपने? आप तो नफरत करते हैं ना मुझसे, फिर क्यों मुझे अक्षत के साथ देखकर आप अपना आपा खो बैठे? कैसे मैं उस जगह ना जाऊं, अक्षत से दोबारा ना मिलूं, उसके लिए आपने मेरी बात भी मान ली, पर शायद ये सब आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं दुनिया के सामने पत्नी हूं आपकी, और आप नहीं चाहते कि मेरी किसी हरकत की वजह से आप पर कोई सवाल उठे, आपकी रेपुटेशन खराब हो। तभी तो आपने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक हम साथ हैं सिर्फ तभी तक आप वहां नहीं जाएंगे और उन लड़कियों से नहीं मिलेंगे। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि एक बार आपका मकसद पूरा हो जाएगा तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, पर आपकी बात सुनकर मुझ पर क्या बीती इसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। खैर, आपको जो करना है कीजिए, मैं नहीं रोकूंगी आपको, पर जब तक मैं आपके साथ हूं मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि आपके मन से नफरत को मिटा सकूं और इस रिश्ते को टूटने से बचा लूं। बाकी आगे जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा।
आरवी ने ठंडी आह भरी और वापस उसके सीने से लगकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी ही वापस नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर बाद शान उठा और उसे बड़े ही ध्यान से खुद से दूर करने के बाद बाथरूम में चला गया। उसके रूम से बाहर जाने के कुछ देर बाद आरवी की आंख फिर से खुली और खुद को अकेले बेड पर देखकर वो समझ गई कि शान उठकर जा चुका है। आरवी ने गहरी सांस लेते हुए खुद को एकदम शांत किया और बीते दिन को भुलाकर खुद को आज के लिए रेडी करते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे पहुंची, तब तक मैं अर्पिता जी पूजा कर चुकी थी। आरवी आज जरा देर से उठी थी। उसने सर झुकाकर उनसे देर से आने के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी बड़ी माँ, रात को देर से सोई थी तो आँख जरा देर से खुली। कोई बात नहीं बेटा, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है। चलिए प्रसाद ले लीजिए और फिर ज़रा नाश्ते का इंतज़ाम देख लीजिएगा। जी बड़ी माँ, आरवी ने हामी भरी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अर्पिता जी ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, कल शाम देर से घर आए थे, व्रत खुलवाया उन्होंने आपका। आरवी ने उनका सवाल सुना तो तुरंत ही हामी भरते हुए बोली, जी थोड़े देर से आए थे पर व्रत खुलवा दिया था, खुद ही खाना भी लेकर गए थे मेरे लिए, देर से आने के लिए माफ़ी भी मांगी थी। एक बार फिर आरवी ने उनके आगे झूठ परोसा, जिस पर अर्पिता जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, उन्हें बचाने के लिए, उनकी गलतियों को छुपाने के लिए कितना झूठ कहेंगी आप, भले ही हमने उन्हें जन्म नहीं दिया है पर माँ की तरह पाला है हमने उन्हें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसलिए कम से कम आपको हमारे सामने तो उनके बारे में कुछ भी झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। अर्पिता जी की बात सुनकर आरवी निगाहें उठाकर उन्हें देख तक ना सकी और निगाहें झुकाए हुए ही हामी भर दी। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद बोली, मैं नाश्ते की तैयारी देख कर आती हूँ बड़ी माँ। अर्पिता जी ने आज्ञा दी तो वो वहाँ से चली गईं। अर्पिता जी ने मन ही मन प्रार्थना की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। कुछ देर बाद सभी नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सुयश जी शान को गुस्से से घूरे जा रहे थे, कल के लिए उस पर बहुत नाराज थे पर गुस्सा था कि कुछ बोल भी नहीं रहे थे। शान सब जानकर भी अनजान बना रहा और अंशु को खाना खिलाने के बाद खुद थोड़ा सा खाना खाया और उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। आरवी ने सबको शांति से खाना खाने को कहा और फिर खुद भी अंशु का बैग, अपना पर्स लेकर बाहर आ गई, जहां अंशु और शान दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। रोज की तरह शान ने अंशु को स्कूल ड्रॉप किया और फिर कार को रिहर्सल हॉल की तरफ घुमा दी। कुछ देर तो दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, फिर शान ने उस सन्नाटे को भंग करते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझसे तो वादा ले लिया पर याद रहे कि मैं वादा तभी निभाऊंगा जब तुम कल वाली हरकत दोबारा नहीं दोहराऊंगी। शान ने इतना कहकर निगाहें आरवी की तरफ घुमाई जो कन्फ्यूज निगाहों से उसे ही देख रही थी। आरवी की उलझन को सुलझाते हुए शान ने आगे कहा, याद रहे जब तक मेरे साथ हो तुम्हारा किसी और लड़के से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए और ना ही तुम दोबारा अकेले कहीं भी जाओगी, उस जगह दोबारा कदम नहीं रखोगी और ना ही शराब को हाथ भी लगाओगी। शान ने उसे वार्निंग देते हुए अपनी बात पूरी की, जिसे सुनने के बाद आरवी ने बस हामी भर दी और बाहर देखने लगी। कुछ देर में वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। शान अपने चेंबर में चला गया जबकि रेहान आरवी को अपने साथ दूसरी तरफ ले गया और व्याकुलता भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, भाभी बात कुछ बनी, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया वो हुआ या नहीं? फायदा तो हुआ, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। घर जाने के बाद उन्होंने बहुत गुस्सा किया, पर फिर वादा भी कर दिया कि जब तक मैं उनके साथ हूँ वो अब उस जगह नहीं जाएंगे और ना ही अब उन लड़कियों से कोई रिश्ता रखेंगे। पहले तो रेहान उसकी बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, पर जैसे ही उसने उसकी बात पर गौर किया उसकी मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और उसने कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, जब तक साथ हैं का क्या मतलब हुआ? आरवी ने कुछ पल खामोश रहने के बाद ठंडी आह भरते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जैसे ही उनका मकसद पूरा हो जाएगा वो हमारे रिश्ते को तोड़ देंगे। आरवी की बात सुनकर रेहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नज़र आरवी के उदास चेहरे पर पड़ी तो शान पर बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद को शांत रखते हुए मुस्कुरा दिया। टू बी कंटिन्यूड।